ಜಯ ಗೋಪೀಜನ ಬಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಜಸದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಜಸದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಜಸದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ಬನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ಬನಚಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲಿಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಸಭಿಲು ಬನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Nitai Gaurango, 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 Nitai Gaurango. Nitai Gaurango bolo, Nitai Gaurango. Nitai Gaurango bolo, Nitai Gaurango. Jaya Sachinandana Gaura Hari. Jaya Sachinandana Gaura Hari. Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha. Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Nitai Gaura Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
Jai Vishnupada Paramahansa Paribraja Gachari Ashtagara Sada Esri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Vishnupada Paramahansa Paribraja Gachari Ashtagara Sada Esri Bhakti Siddhanta Sarasai Thakur Maharaj Ki నామాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్కి అనంతకోటి వైష్ణవ వృందకి శ్రీ శ్రీ రాధాగిరిధరి భగవానికి జై జగన్నాథ బలదేవ సుభద్రాజీకి సమవేత భక్త వృందకి శ్రీల ప్రభుపాదకి నితాయి గోర్ ప్రేమానందే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाद्मुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सगना रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगन ललिता श्रीविशाखानुतं स हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते दत्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीयदैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो हमें लास्ट गुरुवार को हमें सुने थे किस प्रकार एक भयंकर पापी अजामिल अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर जमराज के हाथ से बच जाता है। जमराज जो होते हैं भगवान के प्रतिनिधि है, और ये संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद जो लोग भगवान का भक्ति को नहीं मानते, जो लोग भगवान श्रीहरि का भक्ति नहीं करते, ऐसे लोगों को ले जाने के लिए जमराज के दूत आते हैं। और जो लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो लोगों को ले जाने के लिए भगवान विष्णु के दूत आते हैं। तो हमें चुनना है, हमें जमराज के हाथों जमराज के दूतों के हाथ से जाना है या भगवान विष्णु के दूतों के हाथ से जाना है, ये हमारे ऊपर है। भगवान किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं, वो शास्त्र दिए हैं, ये शास्त्र में सारे भगवान का उपदेश है। ये उपदेश को हमें यदि मानेंगे, हमारे जीवन में हमें अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम भगवान के धाम में जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि शास्त्र और भगवान ये अभिन्न है, एक ही रूप है। भगवान जब एक कलियुग से अपने को अप्रकट कर दिया, कली के आगमन से भगवान जब अपने लीला को समाप्त करके धाम में चले गए, तो भागवत के रूप में ये संसार में देखे गए हैं। यदि हम भागवत को अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से ये भागवत हमें वैकुंठ में पहुंचाएगा, क्योंकि भगवान का एक रूप है, गुप्त रूप, जो गुप्त रूप है ये भागवत है। तो भागवत को अवश्य कलियुग में हमें अध्ययन करना चाहिए। तो हमें लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे किस प्रकार अंतिम समय में ये अजामिल अति भयंकर पापी था, किंतु अंत समय में फिर सांकेत्य दृष्टि से, ऐसे नहीं कि भगवान का नाम ये है, मैं लूंगा मेरा पार हो जाएगा, ऐसा सोच करके नहीं, ऐसे भगवान का नाम कैसे भी यदि किसी भी प्रकार हमें लिया जाए तो निश्चित रूप से ये हमारा मंगल करता है। ऐसे एक मुस्लिम था, तो एक बार वो शौच कर रहा था, शौच कर रहा था और एक सुअर आया, सुअर आके उनको, सुअर क्या खाता है, बिस्टा खाता है, मल खाता है, तो ऐसे वो शौच कर रहा था तो पीछे से सुअर आया और अपने ये मुंह से एक भूसी मारा, एक लगाया पीछे से, आज जब लगाया तो उनको बहुत लगा, सुअर जब भूसी मारता है पीछे से तो बहुत लगा उसको, तो लगा तो मुस्लिम क्या क्या बोल दिया, हराम, हराम मतलब बहुत खराब शब्द है, तो वो बोल दिया हराम, ऐसा कुछ बोल दिया, तो बोल दिया तो भगवान क्या बोले, अरे बोल करके उनका शरीर उधर छोड़ दिया, उनका मृत्यु हो गया वहां पे। तो भगवान क्या सोचे, अरे ये तो मेरा नाम बोला, हराम मतलब हराम मतलब ये सेंस में खराब है, लेकिन भगवान देखिए किसी भी प्रकार यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होता है। तो भगवान क्या बोले, ये मेरा नाम लिया, हा राम, हा हा राम, तो भगवान आए और उनको उद्धार करके लेके गए। तो उसी प्रकार ये अजामिल जो था, चार प्रकार का नाम किसी भी हालत में हम लें तो वो नाम हमारे पर बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि भगवान का नाम हर युग में शक्तिशाली है, विशेष करके ये कलि युग में, क्योंकि कलि युग के लोगों के बुद्धि बहुत कम है, तो सही चीज को वो जल्दी समझ नहीं पाते। इसीलिए श्रीमद् भागवतम बताता है कि प्रायण अल्पायु से कलयस्मिनी युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। कलि युग में प्राय लोग कम आयु के होते हैं और उनका बुद्धि भी बहुत कम होती है, और उनमें वो नाना प्रकार पाप करने के कारण उनके बुद्धि भी चलती नहीं है, उनका बुद्धि काम नहीं करता है, इसीलिए वो भगवान को समझ नहीं पाते। हाई क्लास का जो भगवान का, कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, हम जब बाहर जाते हैं कि हम बताते हैं कि आप भगवान का नाम लीजिए आप लोग का उद्धार होगा, किंतु लोग ये बात को नहीं समझते हैं, क्या ये नाम लेने से क्या हमारा उद्धार हो जाएगा, क्या छोटा सा कार्य करने से हमारा उद्धार हो जाएगा, तो बातों के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं होता है। लेकिन ये अजामिल यहाँ पर प्रमाण करके दिखाया, देखो अंतिम समय में ऐसे कि 25 साल से 88 साल तक उन्होंने अति घिनौने से घिनौने पाप किया था, अति कदर्य कर्म किया था, किंतु अंतिम समय में अपने बच्चा अपने पुत्र को नारायण सांकेत्य, मैं बताया था आपको आप लोगों को लास्ट क्लास में कि भगवान का नाम चार सांकेत्य मतलब संकेत इंडिकेट करते हैं, यदि किसी को हमें ऐसे संकेत करके यदि हमें इसको बुलाते हैं तो ये भी ऐसे इस प्रकार का नाम लेने से भी हमारा उद्धार होता है। दूसरा है स्तोभ, जैसे कि कोई व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है और नारद मुनि का एक्टिंग कर रहा है, और वास्तविक वो व्यक्ति नारद मुनि नहीं है किंतु वो नारद मुनि का रोल अभिनय कर रहा है, रोल निभा रहा है, और नारद मुनि जिस प्रकार का नारायण 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 ऐसे बोलते हैं तो वो व्यक्ति अपने अभिनय करते समय वो नारायण 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 ऐसा बोलता है, तो ये नारायण वास्तविक है किसका, ये नारायण जो है, ये नारायण जो नाम है वास्तविक असलियत में है किसका नाम, ये भगवान का, भले वो कोई अभिनय नेग्लेक्टिंग, और एक ये स्तोभ, स्तोभ मतलब वो सही मतलब शुद्ध भक्ति से वो नाम नहीं ले रहा है, वो स्तोभ से कर रहा है, और दूसरा नेग्लेक्ट अवहेला करके, कुछ लोग ऐसे अवहेला करके नाम लेते हैं तो उसका भी उद्धार होता है। और सांकेत्य परिहास, कुछ जब भक्त लोग जाते हैं तो परिहास करते हैं, प्रभुपाद जी जब अमेरिका में पहुंचे थे तब प्रभुपाद जी अनेक लोग परिहास किए थे, और स्वामी जी आप तो कोट कमीज नहीं पहने हो, कांटा में यहाँ पे आयो, कांटा चमचा में खाना सीखो, हाथ में क्या खाते हो, तो प्रभुपाद जी विदेशियों को कांटा चम्मच छुड़ा करके हाथ में कैसे खाना है तो सिखाए। आज के समय में भी जो विदेशी लोग हमारे भारत में आते हैं तो हाथ में खाते हैं, जब हाथ में खाते हैं हाथ को पूरा अंदर घुसाते हैं, जब हाथ में खाते हैं तो कई सारे जो खाते हैं ना वो चीज सब गिर के उनका धोती में गिरता है, तो हाथ में खाना उनका अभ्यास नहीं है, वो हमेशा कांटा चम्मच में खाते हैं, तो प्रभुपाद जी जा करके वो लोगों को हाथ में कैसे खाना है सिखाए, ऐसे कि वो लोग जो टॉयलेट जाते थे पेपर लेके साफ करते थे, वो पानी यूज नहीं करते थे, ऐसे गंदे रहते थे, इतने गंदे रहते थे, लेकिन प्रभुपाद जब गए तो ऐसे लोगों को जो शौच करके पेपर में पोंछते थे तो प्रभुपाद जी जा करके उन लोगों को कैसे ये सब नीट एंड क्लीन, दो प्रकार का शुद्धता होती है, अंदर से ना, अंदर से तो हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमारा अंदर को शुद्ध करेंगे, किंतु बाहर से स्नान के द्वारा कि और कोई चीजों के द्वारा हम बाहर को शुद्ध करेंगे। तो बाह्य सूची और अंत सूची ये दोनों आवश्यक है। और ऐसे आप लोग कहोगे कि भक्त लोग तो बाहर से कोई इतना ध्यान नहीं देते, सही बात है। भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, स्तर पर होते हैं, तो बाहर दृष्टि को नहीं देखते हैं। आप लोग कथा सुने होंगे कि भागवत के भीतर ऋषभदेव जी नंगे रहते थे, ऐसे कि वो मतलब अपने धूल को लेकर के अपने शरीर में लगाते थे, इतने के प्रकार का पागल जैसे रहते थे। हाँ, और फिर भी वो जो मल त्याग करते थे, उनका मल की जो सुगंध है वो 80 मील तक फैलता था। कि भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण ये ऋषभदेव जी क्या है, क्या भगवान के सत्याभेष अवतार, और ऋषभदेव जी का मल की जो सुगंध है वो 80 मील तक फैल जाता था। देखिए, ये भगवान का भक्ति का ये प्रभाव है। हाँ, भगवान के भक्त भक्ति करने के कारण उनका भीतर इतनी शुद्धता आ जाती है, उनका मलमूत्र से भी एक प्रकार सुगंध ही निकलती है, ऐसा नहीं है। तो ये ऋषभदेव जी के ये बातों से, जीवन के उदाहरण से हमें देख सकते हैं। तो मैं बताया कि सांकेत्य, परिहास, अवहेला, स्तोभ, ये चार प्रकार उपाय के द्वारा यदि हमें भगवान का नाम लेंगे तो हमारा मंगल होगा। तो इसी प्रकार ये अजामिल जो था, तो संकेत पुत्र को देखकर संकेत दृष्टि से अपने पुत्र को बुलाया और उनका उद्धार हुआ। भगवान के दूत आए और जमराज के दूत उनके अंतकरण से उनका सूक्ष्म शरीर को जो छीन रहे थे। मैं भी ये बात बताया था, जो व्यक्ति ये संसार में जितने भौतिक आसक्त है, मतलब सांसारिक संबंध के प्रति, सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो व्यक्ति जितने आसक्त है, और वो व्यक्ति को मृत्यु के समय उतने ही कष्ट होगा, क्योंकि वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि भक्त लोग वो अपेक्षा करते हैं, वो रेडी रहते हैं हमेशा मृत्यु को, वो अपेक्षा करते हैं कब मृत्यु आएगा। भक्त के लिए मृत्यु एक दरवाजा है, वो दरवाजा को पार करके भगवान का धाम में जाएगा। किंतु अभक्तों के लिए ये मृत्यु एक अर्गली जैसे है, मतलब फांसी है। हाँ, उनका वहां पर हनन होती है। क्योंकि जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद यदि वो आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, कि आत्मा के स्तर पे नहीं आता, कि भगवान का भक्ति नहीं करता, वो एक प्रकार का आत्मा का हनन करता है, आत्महत्या करता है। यदि आत्मा के स्तर पर मनुष्य शरीर, ठीक है, हम पशु नहीं है, पशु के भीतर ये ज्ञान नहीं है, पशु नहीं समझ सकता, किंतु हमें मनुष्य है ना, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद यदि वो भगवान का भक्ति को नहीं अपनाता तो आप आत्महत्या करता है, आत्महनन करता है, ये कंजूस व्यक्ति है, कृपण व्यक्ति है। तो ये अजामिल दिखा जा रहा है उनके जीवन में, जीवन तमाम अनेक अनेक पाप किया था, किंतु अंतिम समय में भगवान का नाम लिया। तो ये जो अंतिम समय में भगवान का नाम उनको स्मृति में आया, कैसे आया, कैसे, किंतु ये जीवन भर प्रैक्टिस किया था, अभ्यास बहुत बड़ा चीज है। हाँ, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। यदि हमें प्रैक्टिस करें, अभ्यास करेंगे, ये बात को भी भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अभ्यास योगयुक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनु अनुचिंतयन। अभ्यास करो, अभ्यास प्रैक्टिस, आपका मन नहीं लगता है ना, लेकिन किसी भी प्रकार भगवान में मन को लगाने के लिए अभ्यास करो। भगवान भगवद गीता में ये भी उपदेश करते हैं कि आप लोगों का मन नहीं लगता है ना, लेकिन प्रैक्टिस, वन काइंड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, वन काइंड ऑफ प्रैक्टिस, एक प्रकार का अभ्यास। शुरुआत में बहुत तकलीफ होगा, ये सही बात है, भगवान का नाम को, भगवान का भक्ति को कोई इतना जल्दी स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होंगे, फिर भी हमें तकलीफ होगा, किंतु अभ्यास तो योगयुक्त ने कनेक्शन भगवान के साथ जो कनेक्शन है ये प्रैक्टिस के द्वारा होगा। अभ्यास योगयुक्त ने चेतसा न अन्य गामिना, अरे हमारा जो माइंड है, हमारा मन जो है एक बंदर है, ये हमेशा एक प्रकार का मतलब एक जगह में स्थिर नहीं होता है, लेकिन ऐसे उत्पात मन को, ऐसे बंदर जैसे कुदी मारने वाला मन को हमें भगवान के चरण में जैसे लगा देंगे वो तुरंत शांत हो जाएगा। ये बात भी अम्बरीश महाराज अपने जीवन के चरित्र में सिखाते हैं। अम्बरीश महाराज थे कौन, एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय होने के नाते वो उनको उनके पास कितने काम है, सारे विश्व के राजा थे, सब लोगों का जीवन की दायित्व उनके ऊपर था। और राजा जब धार्मिक होता है तो प्रजा अपने आप भगवत धाम चले जाते हैं,
इसलिए जब हमें एक दायित्वपूर्ण स्थान पे चाहेंगे तो दायित्वपूर्ण स्थान में रहने वाला व्यक्ति को बड़े सहनशील होना चाहिए। जो व्यक्ति को एक दायित्वपूर्ण स्थान मिलता है हाँ, तो वो व्यक्ति को बड़े सहनशील होना चाहिए। यदि वो सहनशीलता को नहीं अपनाता तो फिर उनके प्रति सारे उनके जो नीचे हैं तो अपराध कर बैठेंगे, खास करके भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग के भौतिक मार्ग में भी। यदि राजा यदि सहनशील नहीं होता तो प्रजा उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसीलिए यहां पर और चैतन्य महाप्रभु ये बात ना सॉरी एक बार महानिधि स्वामी बता रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ये भी कह के रखे हैं जो व्यक्ति मतलब खास करके वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करता। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये दुनिया में सारे पापियों को मैं उद्धार कर लूंगा केवल वैष्णव अपराधी को छोड़कर। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ये संसार में सारे पापियों को मैं उद्धार कर लूंगा केवल वैष्णव अपराधियों को छोड़कर। खास करके भक्ति मार्ग में हमें बड़े ही सहनशील होना चाहिए। हाँ मतलब भक्त मतलब क्या है, एक गुरु के स्थान एक दायित्वपूर्ण स्थान है। समाज में जो भगवान को भूल चुके हैं लोग, ऐसे लोगों को भगवान के ओर लेके आना ये एक भक्त का कर्तव्य है। तो वो भक्त यदि सहनशील नहीं होता तो फिर हाँ समाज का पथ प्रदर्शक कौन बनेगा। समाज को भगवान की ओर भूल भटकरे जीवों को भगवान की ओर लेके कौन आएगा। इसीलिए भक्तों को खास करके सहनशील होना चाहिए। ये बात अजामिल के जीवन में भी तो दिखा नहीं जा रहा है, फिर भी उन्होंने एक ही काम किया, अंतिम समय में भगवान का नाम लिया। ये कैसे आया किसे, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर 25 साल उम्र तक भक्ति किया था। और भगवान भगवद गीता में भी ये बात को बताते हैं, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायुते मोहतो भयात्। स्वल्पम अप्यस्य, भगवान का भक्ति थोड़ा भी किया जाए वो थोड़ा भक्ति उनको बहुत बड़ा महान विपत्ति से बचा लेगा। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायुते हाँ, तो यही बात अजामिल के अंत समय में दिखा जाता। और अजामिल का जो पुत्र था वो पुत्रों का नाम संस्कार जो हुआ था वो शुद्ध भक्तों के द्वारा। अजामिल का जो बच्चा था वो बच्चा वो समय मां के गर्भ में था, और मां के गर्भ अवस्था में कुछ वेदांती लोग उनके घर पे जब आए थे वो वेदांती लोग बड़े शुद्ध भक्त थे। और शुद्ध भक्तों के द्वारा जो चीज किया जाता है वो भी शुद्ध होता है। मां के गर्भस्थ शिशु को वो वेदांती लोग बोल करके क्या चले गए, तो जन्म होगा नारायण रख देना। लेकिन ये थे शुद्ध भक्त, और शुद्ध भक्तों के द्वारा नामकरण किया गया। और ये मतलब एक प्रकार का दीक्षा हो गया, इनिशिएशन हो गया, मतलब अजामिल का बच्चा का दीक्षा हो गया शुद्ध भक्तों के द्वारा दीक्षा हो गया। और ये शुद्ध भक्तों के द्वारा दीक्षित नाम को अजामिल ने पुकार रहा था, इसीलिए ये नाम उनके लिए उनके जीवन में काम आया। जब दीक्षित नाम, जब शुद्ध भक्त नाम संस्कार करता है, नाम देता है, तो वो नाम हाँ हमारा जीवन को उद्धार करता है। तो यही हुआ अजामिल के जीवन में, यही सदगति हुआ। उन्होंने जब नारायण को पुकार रहा था, नारायण इदम पीवम हाँ, बड़े पंडित व्यक्ति था, संस्कृत देखिए संस्कृत बोलता था, बड़े पंडित था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति था हाँ, नारायण इदम पीवम बार बार अंत समय में उन्होंने बार बार नारायण आओ, नारायण बैठो, नारायण तुम कहां हो, नारायण तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, इस प्रकार बार बार जब भगवान का नाम पुत्र को लक्ष्य करके वो बोल रहा था, तो उनका अनजान से उनका समस्त प्रकार का पाप कट रहा था। हाँ उस समय बूढ़ा हो गया था, 88 साल उम्र में घर में बैठ गया था, और जीवन तमाम तो पाप लुटतराज किया, घिनौने कार्य किया, बहुत सारे कदर्ज्य कर्म किया, किंतु ये जवानी की अवस्था में सब पाप कर्म किया। खास करके जवान अवस्था में हाँ ऐसा एक अवस्था है, यदि ये समय में हमें भगवान का भक्ति में नहीं लगते तो वो समय हमें एक व्यक्ति को नरक ले जाता है। हाँ आज के देखेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस स्कन में ज्यादा करके जब युवक लोग आ जाते हैं तो लोग हंसते हैं, अरे युवक अवस्था में ये समय इंद्रिय तृप्ति करना है, जो समय इंद्रिय तृप्ति करना है वो समय भगवान का भक्ति क्या करना है, सहज। क्योंकि जवान अवस्था में इंद्रिय बड़े ही शक्तिशाली हो जाता है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, किंतु वो समय में ये प्रभुपाद जी की इस्कन संस्था में जब जवान लोग आकर के भगवान के भक्ति में लग जाते हैं तो लोग ताजुब होकर रह जाते हैं। और कुछ लोग पूछ देते हैं, हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कभी कभी बाहर जाते हैं तो कभी कभी बुजुर्ग लोग, वयस्क लोग आके पूछ देते हैं, क्या आप लोग शादी नहीं करोगे, ऐसे रह जाओगे? वो लोग आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्य होकर पूछते हैं, ऐसे जैसे पूछते हैं बापरे, जैसे कि वो बहुत बड़ा, हम लोग बहुत बड़ा काम कर दिए, कुछ नहीं किए। देखिए भक्ति इतने शक्तिशाली वस्तु है ना, तो जैसे एक व्यक्ति भक्ति करता है ना तो उनका सारा इंद्रिय शांत हो जाता है। और यही प्रोसेस अम्बरीश महाराज भी बताया, सारे इंद्रियों को कैसे काबू में लाना, सारे इंद्रियों को कैसे भगवान का भक्ति में लगा करके उनको शुद्ध करना। और यही बात भी स्मृति शास्त्र में कहा जाता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य में इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्मृति अद। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, जब तक ये भगवान के नाम इतने शक्तिशाली है, हमारा जड़ इंद्रियों के द्वारा स्फुरित नहीं होगा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य में इंद्रिय ग्रहण, ग्राह्य में मतलब आप ग्रहण नहीं कर सकते हो, जड़ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हो, किंतु सेवन मुखे ही जीवा दो। जैसे भगवान के कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब लोग भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, कि सब लोग भागवत पाठ नहीं कर सकते हैं, कि सब लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, कि हर जीव का भगवान के साथ एक अलग अलग संबंध है, ये संबंध के अनुसार वो भगवान का सेवा करेगा, है ना। आप गोलोक धाम में जाओगे, जो पान बना रहा है वो पान बनाएगा, और कुछ सेवा नहीं उसका। जो भगवान को पानी पिला रहा है वो पानी पिलाएगा, और कुछ सेवा नहीं। बस वहां पर अनगिनित, मतलब अनेक अनेक भक्त है, और अनेक अनेक भक्तों का, हर भक्तों का एक एक सेवा, पर्टिकुलर एक ही सेवा, ये निर्दिष्ट सेवा है। और ये निर्दिष्ट सेवा को यदि हमें सुरुखुर से, ये भौतिक जगत में भी, ये यहां पर जो सेवा कर रहे हैं, ये अभ्यास कर रहे हैं, भगवान का सेवा जो कर रहे हैं यहां पर, ये हमें अभ्यास कर रहे हैं। मृत्यु के बाद यदि हमारा भक्ति शुद्ध है तो भगवान का धाम में जाने के बाद वही सेवा करेंगे। और यहां पर देखोगे जो हर भक्तों का एक प्रकार, विशेष प्रकार का सेवा के प्रति उनका अट्रैक्शन, एक प्रकार का आकर्षण होता है। यदि कोई प्रीचिंग का प्रचार कर रहा है, वो प्रचार में ही उनका लगन है, वो प्रचार में ही उनका दिमाग चलती है, और कुछ नहीं। और उनको लाखों प्रकार का दो ये करो से करो, हमें प्रभुपाद जैसे नहीं है, हम प्रभुपाद नहीं बन सकते, हमें प्रभुपाद जी ऑलराउंडर थे, वो सब प्रकार सेवा कर पाते क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। हाँ, लेकिन हमारे जैसे जीवों के लिए एक निर्दिष्ट सेवा, और प्रभुपाद ये भी कहते हैं यदि कोई भक्त 12 साल तक एक पर्टिकुलर सेवा करता है तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। 12 साल लगातार कंटिन्यूसली यदि वो एक ही सेवा को करता है, शुद्ध तरीका से, शुद्ध होना चाहिए, 12 साल यदि करता है, और यदि आपका शुरुआत के समय शुद्ध नहीं है तो जो मुहूर्त से आप शुद्ध होते हैं, शुद्ध होने के लिए जल्दी इतना देरी नहीं है, केवल हमें विषय को छोड़ना है। विषय के द्वारा मन मलिन हो जाता है, अब मलिन मन है कृष्ण न है दर्शन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के भी कहते हैं, जो लोग क्या है, इस लोग स्त्री संगी और स्त्रियों के प्रति आसक्त और विषय व्यक्ति, ये तीनों व्यक्ति का संगति नहीं करना चाहिए, खास करके वैष्णव को। स्त्री संगी जो स्त्रियों के संगत संग कर रहा है, और स्त्रियों के प्रति जो आसक्त है, और क्या बताया, विषय व्यक्ति जो भौतिक विषय के प्रति ज्यादा जिसका अटैच है, आसक्त है, ये तीनों के साथ कभी भक्त वैष्णव को संगति नहीं करना चाहिए। तो ये बात भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। मैं क्या कह रहा था कि हाँ, मलिन मने कृष्ण न है दर्शन। तो हमारा, मैं पहले बताया कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह में इंद्रिय, हमारे जड़ इंद्रियों के द्वारा भगवान का नाम ग्रहण नहीं कर सकते। भले मैकेनिकल हमें 16 माला कंप्लीट कर लिए, क्या होने वाला, क्योंकि जब तक शुद्ध नाम जप नहीं करते हो, आपकी जिह्वा में कृष्ण नृत्य नहीं करेंगे, कृष्ण आपका यहाँ, क्योंकि नाम लेते रूप आए, जैसे आप नाम लोगे रूप भी उनके, कि नाम से रूप आता है, रूप के बाद लीला आता है, नाम से रूप आएगा, रूप के बाद लीला भी आएगा। अब एक बार भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करोगे, फिर ये संसार का लीला में आप नहीं आओगे। जब तक भगवान का लीला में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करता है, इसीलिए शुद्ध भक्तों को नित्य लीला प्रविष्ट कहते हैं। जैसे हमें भगवान, कोई भक्त शुद्ध भक्ति करके भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है, फिर वो भौतिक संसार को वो नहीं आता। तो ये कैसे संभव कैसे है? बड़े ही सहज है, अति सहज है, केवल हमें विषय को छोड़ना है। भौतिक की इच्छाओं को, भौतिक विचारों को यदि हमें मन से निकाल देंगे, छोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर भक्ति, भक्ति देवी प्रवेश करेगी। और भक्ति देवी जैसे ही प्रवेश करेगी तो फिर यह भौतिक संसार के प्रति ऑटोमेटिक हमारा विरक्ति उत्पन्न होगा। भक्ति देवी जैसे हमारा हृदय में विराजमान करेगी तो ऑटोमेटिक भौतिक संसार के प्रति हमारा विरक्त उत्पन्न हो जाएगा, और विरक्ति होने के साथ साथ ज्ञान भी आ जाएगा। भक्ति उत्पन्न होने के बाद, भक्ति उत्पन्न होने के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य, वो दो चीज आ जाते हैं, विरक्ति और ज्ञान। और ये ज्ञान कैसे? ज्ञान ना भगवान के संबंधित ज्ञान। जब तक भगवान के संबंधित ज्ञान नहीं होता तो वो ज्ञान हमें भगवान का शरणागत नहीं कराता। ऐसे तो संसार में लोगों का बहुत बड़ा ज्ञान है, ऐसे तो रावण के पास बहुत बड़ा ज्ञान था लेकिन राम को माना क्या? रावण के पास बहुत बड़ा ज्ञान था लेकिन राम को नहीं माना। उसी प्रकार रावण का ज्ञान हो तो फिर वो ज्ञान का कुछ मतलब नहीं रहता। लेकिन यहां पर अजामिल ने जब अंतिम समय में, जब कोई व्यक्ति दुख में होता है ना, बड़े ही हृदय से भगवान को पुकारता है, और मृत्यु के समय बड़े ही दुखद अवस्था है। भक्तों के लिए नहीं, खास करके अभक्तों के लिए। भक्तों तो मतलब वो चाहता है, हाँ, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण ना, ऑलवेज वेटिंग, वो हमेशा अपेक्षा कर रहा है। भक्त जो होता है हाँ, वो मृत्यु को हमेशा अपेक्षा कर रहा है, कब आएगा, मैं कब भगवान का धाम जाऊंगा। ऐसे शुद्ध भक्तों का कुछ अभिलाषा नहीं रहता, इच्छा नहीं रहता। फिर भी जो हमारा सो धाम, सो गृह, हाँ, एक बार कोई एक भक्त बता रहा था, जैसे कि एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में जब जाता है सफर के समय, वो अपने आटेज को चेन में बांधता है, लक करता है, और लक करते हुए चेन में बांधते हुए फिर भी वो जब सोता है, फिर बीच बीच में उठ करके, मेरा आटेज है कि नहीं, मेरा अटैच ठीक जगह में जैसे रखा था है कि नहीं, ऐसे देखता है। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति जैसे अपने घर में आ जाता है तो ये अटैच कहां पर, ताला कहां पर, चेन कहां पर, फेंक फांक करके वो सो जाता है, निश्चिंत हो करके सो जाता है। हाँ, वो और उनके मन में डर नहीं रहता कि मेरा अटैच को कोई ले जाएगा, कि मैं चाबी लगाए कि नहीं, इस प्रकार का उनके मन में डर नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार ये संसार एक प्रकार का डरावा स्थान है। हाँ, तो इसीलिए भक्त लोग जाना चाहते हैं। हाँ, गौर गोविंद स्वामी, जब भक्ति सिद्धांत स्वामी भी जब अपने शिष्य के भीतर झगड़ लग गए, गुरु इसीलिए जल्दी ये भौतिक संसार छोड़ देते हैं, इसीलिए क्यों अपने भक्तों, अपने शिष्यों के भीतर जब झगड़ देखते हैं ना, वो चीज को गुरु बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब एक गुरु के, शुद्ध भक्त के शिष्यों के भीतर, हाँ, अपने अपने शिष्यों के भीतर जब झगड़ हो जाते, झगड़े लग जाते हैं, तो फिर और वो गुरु वहां पर रहता नहीं है, वो चले जाते हैं अपनी इच्छा से, वो चले जाते। गौर गोविंद स्वामी, भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज, ये उनके जीवन में ऐसे हमें देखें। हाँ, तो हमें यहां, मैं क्या कह रहा था कि हमारे जड़ इंद्रियों के द्वारा भगवान के शुद्ध नाम स्फुरित नहीं होगा, किंतु भगवान का सेवा करेंगे तो सेवा के द्वारा हमारे इंद्रिय शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए अम्बरीश महाराज दिखाए, सवे मने कृष्ण पदार विंदयो, वाचां से वैकुंठे गुणानुवंदने, करे हरे मंदिर महाजन दिशु, श्रुति चकराच्युत सत्कथ दोयो, मुकुंद लिंगाराय दर्शन दृश्य, तत्गात्र भृत्य स्पर्शंगे संगम, पादो हरे कृत्र पदानुसर्पणे, शीर हृषि के पदाभि वंदने, कामंचु दास न तु काम काम्याय, जथात्म श्लोक जनश्रय रति। ये सारे इंद्रियों को, अपने पाद को, सिर को कैसे भगवान की सेवा में लगाकर उनको कैसे शुद्ध किया जाए, ये अम्बरीश महाराज जैसे महान भक्तों के द्वारा श्रीमद भागवतम में भी बताया गया है। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र होता नहीं ना शुरुआत के समय, सेवा करो। जो सेवा करते करते आपका इंद्रिय शुद्ध हो जाएगा। हमें सेवा क्यों करते हैं? हमें सेवा इसीलिए करते हैं कि शुद्ध नाम हमारे मुख से उत्पन्न हो। सेवा हमें इसीलिए करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को सही रूप में हम जप कर पाए, इसीलिए सेवा करते हैं। और सेवा करना है, यदि कोई व्यक्ति का हरे कृष्ण मंत्र जप करना ठीक से होता नहीं ना, उनको ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहिए। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा जब सेवा करेगा तो उनके भीतर भगवान का सेवा से उनके भीतर से अनर्थ दूरीभूत होगा, और जब अनर्थ शरीर से निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक हाँ कहा जा रहा है शास्त्रों के द्वारा, स्वतः स्वतः सेवान मुखे ही जिह्वादो, स्वयं 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 मतलब अपने आप भगवान के साथ जो हमारा रिलेस संबंध है ना वो नेचुरल है, किंतु थोड़ा सा ये संसार के प्रति आसक्त होने के कारण थोड़े समय के लिए वो कचरा ढक गया। हाँ आईना के ऊपर धूल जैसे, हाँ कि कोई कोई व्यक्ति के व्यक्ति हम देखें बहुत सालों से हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, हाँ फिर भी उनके भीतर कुछ परिवर्तन बदलाव नहीं आता है, और आज कल एक भक्त आया, हाँ देखा तो थोड़े ही दिन में हरे कृष्ण मंत्र जप करके कितने अच्छे भक्ति उनके हृदय में कितने सुंदर भक्ति उत्पन्न हुआ है, देख के आनंद हो रहा है। हाँ और इतने सालों से हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, एक भक्ति क्या बता रहे थे, डामर जैसे, जैसे एक मिरर में डामर ना क्या उसको कहते हैं, वो लग गया है ऐसे धूल जम गया है, तो ऐसे कपड़ा लो पूछ लो मिरर साफ हो जाएगा, लेकिन आईना में कोई डामर लग जाए उसको केरोसिन दे करके हाँ बड़े ही रगड़ना पड़ता है। उसी प्रकार हमारा हृदय में ऐसे ही अवस्था हो गया, उसको घिसड़ना पड़ता है, घसड़ना पड़ता है। हाँ कोई कोई व्यक्ति का हृदय बड़े सरल होता है, भगवान का नाम स्वतः उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ व्यक्तियों में उनके हृदय में डामर जैसे आईना में जब कुछ लग जाता है ना, उनको कपड़ा लगा करके उनको घिस जब घसड़ते हैं तब जाकर वो आईना साफ होता है। उसी प्रकार हमारा हृदय रूपी आईना में ऐसे हाँ मतलब ऐसा कचरा लगा लग गया है, तो उनको थोड़ा जोर करके घसड़ना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर भगवान दर्शन देंगे। भगवान है, भगवत गीता में कहते हैं हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय में हूं किंतु हमें दर्शन इसलिए नहीं हो पाता है, जोग माया समावृत, ये माया के द्वारा माया आवरण के द्वारा हमारा हृदय में भगवान दर्शन इसीलिए नहीं देते हैं कि वो भौतिक विषय वासना के प्रति हमारा विषय के प्रति हमें आसक्त है। हाँ भले ही अजामिल ने अंतिम समय तक पाप किया था, किंतु अंत समय में जो नाम पुकारा ना, अंत समय में जो नाम पुकारा वो बड़े हृदय से पुकारा था, इसीलिए भगवान का नाम बड़े हृदय से लेना चाहिए, नहीं होता तो प्रयास करना चाहिए। भगवान का नाम हृदय से लेना होता नहीं हमारे से, किंतु यदि हम प्रयास करेंगे भगवान हमें शक्ति प्रदान करेंगे, भगवान हमें हमारा प्रयास को देखते हैं, हमें कितने हद तक कोशिश कर रहे हैं, उनको पाने के लिए हमारे भीतर कितने लोभ है, हमें कितने लोलूप है, लोभी कितने हैं। जैसे संसार के वस्तु को इकट्ठे करने के लिए लोभ लोभ दिखाते हैं, लोभी होते हैं, उसी प्रकार भगवान का भक्ति के लिए हमें कितने हद तक लोभी है, ये चीज को भगवान देखते हैं। भगवान आप बहुत बड़ा कार्य करोगे, कुछ लोग होते बहुत कार्य करते हैं लेकिन भगवान का भक्ति नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो जो मैं भक्त्या, एक छोटा सा चीज तो लेकिन प्योरली बड़े ही शुद्धता के साथ भगवान आज इसलिए भगवान कहते ना, हाँ भगवान कहते हैं प्योरिटी इज फोर्स, शुद्धता ही शक्ति। यदि आपके भीतर शुद्धता है, प्योरिटी है, हाँ तो भगवान को छोटा सा चीज के द्वारा उनको आकर्षित कर लोगे। भगवान बहुत बड़ा चीज की मांग नहीं कर रहे हैं, भगवान ये चीज देखते हैं आपके हृदय कितने शुद्ध है, आपके हृदय में कितने पवित्रता है। यदि प्योरली यू कैन गिव, आप यदि कोई चीज दोगे तो दे सकते हो तो वो ग्रहण करेंगे। तो यहीं पर जो अजामिल जो भगवान का नाम लिया तो बड़े ही शुद्ध मतलब हृदय से लिया, इसीलिए विष्णुदूत वहां पर आकर पहुंच गए। हमें अभी ठीक है, अभी हमें भगवान का नाम उच्चारण करें, उच्चार मतलब प्रयास करके भी हमें हृदय से भगवान को नहीं पुकार पाते, लेकिन जब हमें शरीर में कुछ तकलीफ आ जाता है ना तो वो समय देखो हे भगवान बचाओ, कैसे बोलते हैं ना जब हम बीमार हो जाते हैं, हाँ बीमार के अवस्था में जो भगवान को पुकार है ना वो थोड़ा अलग होता है। हाँ तो यही किया अजामिल ने, यही किया, जब अंत समय में जो नाम लिया ना वो बड़े हृदय से लिया, इसीलिए भगवान का दूत यहाँ पर आ गए। और जब आ गए तो जमराज के दूत ये विष्णु दूत को देख के क्या आप लोग इतने अच्छे देखते हो, देखने में इतने अच्छे लगते हो, लेकिन ये पापी को बचाने के लिए आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए, हाँ भद्र व्यक्ति जैसे दिखते हो लेकिन ये पापी के पक्ष लेने के लिए, हाँ एक मतलब ऐसे एक असत गुंडा, हाँ गुंडागिरी कर रहा था अजामिल, गुंडागिरी कर रहा था, गुंडागिरी करके पैसा कमा रहा था, तो ये गुंडा को सपोर्ट करने के लिए, गुंडा को मदद करने के लिए आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए हो। हाँ तो ये बात को कहते हैं सर्वे पद्म पलसा अख्यम, ये जो अजामिल के जो ना जमराज के जो दूतों थे तो भले हाँ बड़े ही निष्ठुर स्वभाव के थे, लेकिन एक शुद्ध भक्तों के संगति करने के कारण वो कम से कम भगवान के दूतों को पहचान लिए। एक शुद्ध भक्त जमराज कौन है, महाजन में एक है जमराज जो है शुद्ध भक्त है, तो एक शुद्ध भक्त की संगति करने से ये जमराज के दूत, जमराज के दूत बहुत भयंकर होते हैं, बड़े ही अभद्र जैसे होते हैं, बड़े ही निष्ठुर होते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे निष्ठुर व्यक्ति को भगवान के शुद्ध भक्त भगवान दर्शन नहीं देते, लेकिन यहां पर जमराज के दूत पहचान लिए। क्यों ना, जमराज जैसे महाजन के संगति बार बार कर रहे थे, जमराज का संगति ये दूत लोग, जमराज के दूत लोग बार बार संगति कर रहे थे, उनके प्रवचन में बैठ रहे थे, उनका प्रवचन सुन रहे। जमराज जो प्रवचन, यहाँ पे जमलोक में भी प्रवचन होता, भागवत क्लास होता है, अब भागवत क्लास में जमराज के दूत बैठते हैं। हाँ, और जमराज के जब क्लास देते थे, भागवतम क्लास ले रहे थे, लेते थे वो समय जमराज के दूत बैठ करके भगवान के भक्त कैसे होते हैं वो शरीर का वर्णन किए थे जमराज, और यही बात को सुने थे वहां पर जमराज के दूत। और ये होने के कारण, ये साधु का संगति होने के कारण, तो जमराज के दूत कम से कम ये भगवान विष्णु के दूतों को पहचान लिए। पद्म पलसा अख्य, आपके आंख जो है ना, जमराज के दूत कहते हैं आप लोगों का आंख कमल के पकुड़ियां जैसे लगती है। हाँ, भगवान के जो भक्त होते हैं, खास करके भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं, वो बराबर भगवान विष्णु के सौंदर्य चेहरा के रूप के जैसे ही है। केवल दो तीन चीज का फर्क है। एक है भगवान के छाती में जो भृगु जी लात मारा था तो लात का चिन्ह नहीं है, और सिवस्त चिन्ह नहीं है, और भगवान जो कौस्तुभ मणि पहनते हैं वो कौस्तुभ मणि नहीं है। भगवान विष्णु के विष्णु दूतों में ये तीन चीज नहीं है, एक कौस्तुभ मणि नहीं है, और भृगु जी का लात नहीं है, और श्रीभस्त चिन्ह नहीं है, ये तीन चीज नहीं है। नहीं तो भगवान का जो भी सब कुछ है, उनका आंख, उनका हाथ, उनका शरीर, उनका चार भुजा और बाकी सब कुछ सब विष्णु दूतों में है, ये तीन चीज नहीं है। तो यहां पर ये जमराज के दूत पहचान लिए, आप लोगों का आंख जो है ना कमल फूल के पंखुड़ियों के जैसे हैं। सर्वे पद्म पलसा अख्या, आपके आंखों पद्म फूलों के कमल फूल के पंखुड़ियों जैसे सुंदर लगती है। हाँ, और पीत केसयो बासस, और आप पीले कलर का, पीले रंग का ये रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान के वहां पर वैकुंठ में कोई भी व्यक्ति सूट पैंट पहनता नहीं है, यहीं पर भौतिक जगत ने सूट पैंट ये से पहना स्टार्ट किए। हाँ, जमराज के दूत ना सॉरी वैकुंठ में कोई व्यक्ति पैंट कमीज पहनता नहीं है, पैंट शार्ट पहनने वाला व्यक्ति आपको एक भी देखने के लिए नहीं मिलेगा वैकुंठ में। जब जाओगे, ये जो हमारा वेशभूषा है ना, एक प्रकार का विष्णु भक्तों का वेशभूषा है। भारत का जो संस्कृति है, ये संस्कृति, ये जो धोती, ये कमीज, ये पहनना, ये वेद, ये एक शुद्धता है, वेदों में भी बताया गया है। लेकिन आजकल के लोग ये पैंट कोट क्या क्या पहन रहे हैं, ये सब बाहर का पाश्चात्य देश का कल्चर है, पाश्चात्य देश का संस्कृति को अपना रहे हैं। आजकल के माता जी लोग तो पैंट शर्ट कमीज पहनने लग गए, प्रभु जी लोग तो छोड़ो, पहले पहले प्रभु जी लोग पहनते थे ठीक है, लेकिन आजकल के समय इतने ऐसा, तो जो माता जी को साड़ी, और पाश्चात्य देश के माता जी लोग साड़ी पहनने लगे, भारत के माता जी लोग कूट कमीज पहनने लगे, ये सब एकदम एकदम भारतीय संस्कृति को वो अपना रहे हैं, और पाश्चात्य देश का संस्कृति ये भारत के माता जी अपना रहे हैं। ये बहुत ही है, मतलब दूसरे को धर्म अपनाना ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। ये बात परो धर्म भयावह, भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं परो धर्म भयावह, ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए अपने स्वधर्म, अपने जो धर्म है वो धर्म में स्थित रहना। जो व्यक्ति, जो गृहस्थ है गृहस्थ में रहे, एक ब्रह्मचारी, प्रभुपाद जी कहते हैं जो ब्रह्मचारी लोग है वो ब्रह्मचारी जीवन में रहे, जो भी कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बना है वो ब्रह्मचारी जीवन में ही रहे, अग्रस्त जो है वो गृहस्थ में रहे, वानप्रस्थी सन्यासी अपने अपने में स्वधर्म, अपने धर्म में रहो और भक्ति करो, उद्धार होगा। भागवतम में बताया जाता है, भगवान विष्णु कहते हैं यदि कोई व्यक्ति स्वधर्म, अपने जो धर्म, जो धर्म में है, हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में, जो आश्रम खराब नहीं है, आश्रम खराब नहीं है, व्यक्ति में दोष आ जाता है, व्यक्ति में खराबी आ जाता है। ले कोई भी आश्रम में रहे, व्यक्ति भगवान के धाम में पहुंच सकता है। हाँ, तो और ये भी बात है, भक्ति कोई आश्रम में बंधा हुआ नहीं है। शुद्ध भक्ति कोई आश्रम के भीतर बंधा हुआ नहीं है, ना ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। हाँ, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहें, गोपी भरत पद को मले दासन दासन दास। भक्ति क्या है ना, दासों के दासों के दासों के दास बनना, यही वास्तविक भक्ति है। भक्ति कोई आश्रम का नहीं है। हाँ, तो ये जमराज के दूत कहते हैं, पीतो केसय बासस, आप लोग पीले रंग का केसरी वस्त्र धारण करे हो, और सब किरीट है ना कुंडे लेना, और सब मुकुट पहने हो, और एक कुंडी लेना, आप कुंडल पहने हो, और लसत पुष्कर मालिन, बैकुंठ में जो पारिजात पुष्प होती है ना, वो अम्ब्रान होता है, वो कभी मुरझाता नहीं है। पारिजात पुष्प जो स्वर्ग में भी है, जो स्वर्ग में जो पारिजात पुष्प है, जो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा कहने से जब गए थे स्वर्ग गए थे, और जैसे वो पारिजात का एक पौधा को उखाड़ करके द्वारका, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बहुत ही संसार में द्वारका में जब राज कर रहे थे, तो ये इंद्र के माँ दीति दीति का एक कुंडल को एक राक्षस ने चुरा लिया था। और भगवान कौन से राक्षस, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, वो राक्षस को जब भगवान मारे और मार करके वो कुंडल को लिए, और ये कुंडल को दीति को, देवताओं की माँ दीति को देने के लिए स्वर्ग गए थे, और भगवान विष्णु के नारायण के साथ ये सत्यभामा भी गए थे। और एक बार नारद जी द्वारका आए थे, जब आए थे अपने हाथ में एक पारिजात पुष्प लेके आए थे बैकुंठ से, और ये बैकुंठ का पुष्प पारिजात पुष्प को उन्होंने रुक्मणी को दे दिए नारद जी। और रुक्मणी के हाथ में जब ये पारिजात पुष्प देखे, तो सत्यभामा भी उनके मन में ईर्ष्या आया, और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि मुझे भी ऐसे के पुष्प चाहिए, मुझे अभी ला करके दो। तो भगवान बोले, एक पुष्प क्या, मैं उनका एक पौधा ला करके दे देता हूँ। हाँ, पुष्प क्या, मैं उनका पौधा ला करके दे देता हूँ, ऐसे उनको प्रमिज किए थे। और जब असुरों को लड़ने के लिए गए थे, तो भगवान सत्यभामा को लेकर के गए थे, और वो असुर को वध करने के बाद दीति देवताओं की माँ ये असुर देवताओं के माँ दीति का कुंडल को चोरा लिया था, और असुर को मार के भगवान दीति का कुंडल को लेकर के स्वर्ग गए सत्यभामा के साथ। और भगवान वहां पर इंद्र के माँ दीति को वो कुंडल को वापस किए, और वापस करके वो आ रहे थे वो समय सत्यभामा भगवान को याद दिला दिए कि आपने मुझे प्रमिज किए थे ना, मुझे पारिजात पुष्प दोगे करके, तो देखो कितने सारे पारिजात पौधे हैं, तो मुझे ला करके दो। तो भगवान एक पारिजात पुष्प का पौधा उखाड़ करके ये सत्यभामा को दिए। तुरंत तो वहां पर इंद्र सारे देवताओं के साथ आ गया भगवान के साथ युद्ध करने के लिए। तो ये देवताओं की स्थिति है, इसीलिए कोई व्यक्ति स्वर्ग में देवता बनने के लिए जाना नहीं चाहिए। और जैसे कोई व्यक्ति ये भौतिक संसार में सत्वगुण में हो जाता है, तो वो देवता बन जाता है, उनको स्वर्ग भेजा जाता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य गच्छन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। ये जो तीन प्रकार के ये गुण का खेल है, ये भगवान ये भौतिक संसार जो है तीनों त्रिगुणात्मिका, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का खेल चल रही है। तो भगवान कौन व्यक्ति को कहां भेजेंगे, ये कौन कह रहा है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, सुप्रीम अथॉरिटी कह रहे हैं। जो हर व्यक्ति को कहां जाना है, जो भेजता है भगवान, कौन व्यक्ति कहां जाएगा जो भेजता है, वही बोलता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कौन व्यक्ति कहां जाएगा, तो वो कह रहे हैं भगवद गीता में, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, जो ये भौतिक संसार में सत्व गुण के है वो लोग कहां जाएंगे ना, ऊर्ध्व मतलब स्वर्ग लोग जाएंगे। मध्य गच्छन्त मध्य तिष्ठन्ति राजसा, ये भौतिक संसार में जो थोड़े बहुत धर्म करते हैं और पाप भी करते हैं, धर्म करते हैं इसके साथ साथ पाप करते हैं, भोग बुद्धि रहता है, वो राजसा राजस मध्य तिष्ठन्ति राजसा, यहां पर राजस। और अधो गच्छन्ति तामसा, नरक कौन जाते हैं, तामस, जो तमोगुणिक है, अध गच्छन्ति तामसा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था। सत्वगुण के लोग स्वर्ग, राजस का रजगुण के मध्य यहां, और तमोगुण के नीचे नरक। तो ये भगवान भगवद गीता में बताते हैं। तो ये जो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो ये जो देवता देवलोक में जाना ये बहुत बड़ा काम नहीं है। कोई व्यक्ति को देवलोक में जाना इच्छा नहीं करना चाहिए। तो देखो ये देवता होकर के भी वो भगवान के साथ टक्कर देते, चैलेंज करते हैं, भगवान के साथ भी लड़ाई करते हैं। तो जो भगवान असुरों को मार करके देवता को हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, हमेशा रक्षा देते हैं, तो वही देवता लोग भी भगवान के साथ लड़ने के लिए आ जाते हैं। हाँ, जो देवताओं को बचाने के लिए भगवान, हाँ, और वो गए थे किस लिए, उनके मां का कुंडल को देने के लिए गए थे। तो ये देवता लोग ये बात को नहीं देखें, लेकिन एक पौधा उखाड़ने से वो भगवान को साथ लड़ने के लिए आ गए। तो देवता लोग भी शुद्ध भक्त नहीं है ना। अभी जो ब्रह्मा जो है वो शुद्ध भक्त है। अभी जो ब्रह्मा भी कभी कभी दिखा जाता है, ब्रह्मा भी शुद्ध भक्त नहीं होते। हाँ, ब्रह्मा भी जो देवता है, लेकिन देवताओं के लीडर है, प्रमुख है। कभी कभी देखा जाता है ब्रह्मा जी भी शुद्ध भक्त नहीं होते। हाँ, और अभी जो ब्रह्मा है वो शुद्ध भक्त है। इसीलिए हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये जो हमारे संप्रदाय है ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है, और अभी जो ब्रह्मा है वो शुद्ध भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है। तो यहां पर ये कहते हैं जमराज के दूत कहते हैं, अरे अरे तुम लोग इतने भद्र व्यक्ति देखते हो, इतने सुंदर लगते हो, तो कितने और किरीट है ना, मुकुट पहने हो, कुंडल धारण किए हो, लसत पुष्कर मालिन, और गले में आप लोगों का इतने तेज एक सुंदर माला है जो एकदम तेजस्वी है, एकदम मुरझाता नहीं है, अम्लान। स्वर्ग की बैकुंठ की माला जो है वो कभी मुरझाते नहीं। ये जगत की माला तो सुबह तोड़ो तो एक घंटा के बाद मुरझा जाता है, थोड़े समय के बाद हमें भौतिक संसार के फूल मुरझा जाता है, लेकिन स्वर्ग के और वैकुंठ के जो फूल है, हाँ, वो कभी मुरझाता नहीं है, अम्लान। इसीलिए कहा जाता है लसत पुष्कर मालिन। आप लोग जमराज के दूत कहते हैं विष्णु दूत, हे विष्णु दूत, विष्णु दूत तो जानते नहीं उस समय, हाँ, अरे तुम लोग इतने भद्र व्यक्ति दिखते हो, और आप लोग ये गले में ऐसे के ऐसे एक एक माला धारण करके रखे हो जो कि मुरझाता नहीं, म्लान अम्लान है। हाँ, बड़े ही लसत, बड़े ही चमकीला, लसत मतलब चमकीला, चमक दिख, चमकपन उनसे निकल रही है, फूलों से चमकपन निकल रही है। हाँ, सर्वे सर्वे च नूतन वयस, और सब जवान दिखते हो, सब तरुण दिखते हो। अब भगवान के भक्त हमेशा तरुण रहते हैं, उनको बुढ़ापा आक्रमण नहीं कर पाता, क्योंकि वो व्यक्ति को बुढ़ापा आक्रमण करता है जो प्रकृति के भीतर है। अब भगवान के भक्त जो होते हैं वो प्रकृति भूत प्रकृति के बाहर चले जाते हैं। ये सत रज तम, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति, हाँ, सतगुण रजगुण तमगुण, ये तीनों गुणों में भगवान के भक्त नहीं होते हैं। जेहेतु ये तीनों गुणों में रहोगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि होगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएंगे, जन्म मृत्यु ये सब ये तीनों गुणों में रहने वाले व्यक्ति को आएंगे। किंतु ये तीनों गुणों को जब पार कर जाओगे, ये भूत प्रकृति को जब एक भक्त भूत प्रकृति को जब लांग जाता है कोई व्यक्ति, तो फिर वहां पर प्रकृति के द्वारा उनको कोई सताया नहीं जाता है। प्रकृति के द्वारा जो बुढ़ापा बीमारी ये सब आता है, ये यहां पे होने के कारण, लेकिन जैसे प्रकृति के पार हो जाते हैं तो ये प्रकृति उनके ऊपर ये सब जो हुक्म नहीं चला पाती है, ये सब चीज उनके ऊपर नहीं देता है। तो यहां पर सर्वे च नूतन वयस, आप लोग सब तरुण दिख रहे हैं। हाँ, भगवान के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त होने के नाते सब तरुण थे, जवान थे। और सर्वे चारु चतुर्भुजा, और आप लोग का चार चार भुजे हैं भगवान विष्णु के, जो साजुज्य मुक्ति के स्तर पर, क्योंकि चार प्रकार जो कई प्रकार जो मुक्ति होता है उसमें से, तो ये साजुज्य मुसायुज्य मुक्ति उसमें से भगवान के जो दूत होते हैं, तो ये हर दूतों का चार भुजा होता है। बैकुंठ में चार भुजा होता है, हाँ, तो हर भक्तों का, विष्णु दूतों का भी। तो चतुर्भुज सर्वे चारु चतुर्भुज, और क्या जमराज के दूतों ने ये भगवान विष्णु के दूतों का रूप सौंदर्य का वर्णना कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोग सब तरुण हो, चार चार हाथ वाले हो, और क्या ना, आप लोग अपने अपने हाथों में धनुष, हाँ धनुर्बाण लिए रखे हो, निसंग, निसंग मतलब तर्कस, तर्कस निसंग मतलब तर्कस, और शंख चक्र निसंग असी गदा शंख चक्र, असी मतलब तलवार और गदा शंख चक्र, और अंबुज पद्मफूल, अंबुज अंबु से उत्पन्न होने के कारण कमल का और एक नाम है अंबुज। हाँ तो अंबुज आप लोग अपने अपने चारों हाथों में ये धनुष निसंग असी गदा शंख चक्र अंबुज, हाँ ये चीजों के द्वारा आप सुशोभित हो, आप शोभा पा रहे हो। हाँ ये इस प्रकार का हाथ हथियार के द्वारा आपका सौंदर्य, आपका शोभा बढ़ रही है। जमराज के दूत कह रहे हैं तो ये सब श्रीय, आप शोभायमान सुंदर लग रहे हो। दिश वितीर आलोको, और अजामिल जब मर रहा था, अजामिल जब मर रहा था उनका मृत्यु का समय कैसा था? रात्रि का समय, भोर रात्रि। और जो व्यक्ति रात्रि में मरता है ना उनको वो रात्रि में जलाना नहीं चाहिए, मारना नहीं, उनको कबर, उनको मिट्टी मिट्टी नहीं देना चाहिए। जो रात्रि में दोगे वो बहुत नरक गति प्राप्त करेगा। जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता तब तक कोई व्यक्ति को मिट्टी नहीं देना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति दिन में मरता है तो सूर्य अस्त जाने के पहले उनका संस्कार कर देना चाहिए, दाह संस्कार कर देना चाहिए सूर्य अस्त होने के पहले। और यदि रात्रि में मरता है तो सूर्य जब उदय होता है, उदय होने के बाद, हाँ ये शास्त्र में बताया गया है, पद्म पुराण में ना महाभारत में ऐसा लिखा गया है, मैं कहां पढ़ा था। हाँ तो रात्रि, और अजामिल जब मर रहा था वो समय रात्रि का समय था, घोर अंधेरा था, घोर अंधेरा था, रात्रि का समय था, वो समय अजामिल का मृत्यु हो रहा था। और कैसे पता चल रहा है? हम देखें क्या? हम तो नहीं देखे ना, तो आप लोग को आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, ये भागवत कह रहा है कि दिस बीतिमर मतलब घोर अंधकार। अजामिल जब मर रहा था वो घोर अंधकार था। और ये जो विष्णु दूत वहां पर आके पहुंच गए, विष्णु के दूतों के शरीर से एक प्रकार का रोशनी, एक प्रकार का तेज, हाँ भगवान के विष्णु दूतों के शरीर से एक प्रकार तेज निकल रही थी वो समय, वो सारा अंधेरा को भी भगा रहा था। ये बात को जमराज के दूत कह रहे हैं, आ हे भद्र व्यक्ति, आप लोगों के शरीर से इस प्रकार का तेज निकल रही है, रोशनी निकल रही है। हाँ ये सारे बीतिमीरो मतलब घोर घटा अंधकार को दूर कर रही है। हाँ ये घोर अंधकार था। और जमराज के दूत अंधेरा अंधेरे में आते हैं, हाँ जमराज के दूत ना अंधेरे अंधेरे में आते हैं, और विष्णु के दूत जो आते हैं ना उसे स्वयं प्रकाशमान हो जाता है, वो जगह स्वयं प्रकाशित हो जाता है। और यहाँ पर भागवत का वर्णन के द्वारा पता चलता है कि दिशो बीतिमोर आलोक, अजामिल का मृत्यु का समय रात्रि का समय था, और जैसे वो समय, और जमराज के दूत कहते हैं ये अंधेरा था लेकिन आप लोग यहाँ पर आ जाने से वो सारे अंधेरा एकदम दूर हो गया, ये जगह चकमक करने लगा। हाँ कोई कोई हमें सुने हैं कि विश्व सुंदरी, हाँ को कहते हैं ना विश्व सुंदरी, जो रिवार्ड मिलता है, प्रतियोगिता होती है तो विश्व सुंदरी प्रतियोगिता ऐसा सब होता है, तो ये विश्व सुंदरी की लो एक अंधकार कमरा में भर के रख दो, हाँ आपका सुंदर शरीर से तेज निकाल करके अंधेरा को भगा दो। ये विश्व सुंदरी को बोलो कि आप विश्व सुंदरी का, हाँ ये मिला है ना आपको, तो आपका विश्व सुंदरता को दिखा करके, आपका शरीर का तेज दिखा करके अंधेरा को दूर करो। हाँ तो यदि कोई तो अंधेरा ये तेज दिखाना है तो भगवान के भक्त बन करके। तो यहां पर अजामिल के दूत ना जमराज के दूत कहते हैं दिशो बीतिमीरो आलोको, आपका शरीर तेज के, शरीर का तेज के द्वारा वो सारे अंधकार दूर हो गया, सारे अंधकार। आप आने मात्र से जो पहले जमराज के दूत वहां पर पहुंचे थे और अंधेरा था, और जैसे विष्णु दूत वहां पर आ गए तो सारे अंधेरा अपने आप चला गया। दिशा बीतिमीरो सारे सारा दिशा को आप जगमगा रहे हो, हाँ चारों दिशा को आप जगमगा रहे हो। दिशो बीतिमीरो आलोको कुरबंत, कुरबंत सोने तेज सा, जमराज के दूत कह रहे हैं सोने, सोने मतलब अपनी तेज के द्वारा, ये लोग सोने सोने मतलब अपनी तेज सा अपने तेज के द्वारा कुर्बंत कर रहे हैं, हाँ चारों दिशा को जगमगा रहे हैं, आलोकित कर रहे हैं। हाँ की अर्थ तो हमारा आज के दूत यहां पर भगवान विष्णु के दूत का दूतों का रूप सौंदर्य का वर्णना करने के बाद तो कहते हैं की अर्थ किस लिए आप लोग किस लिए ये पापी को लेने ले जाने के लिए हमको रोक रहे हो। ये पापी को ले जा रहे हैं, हमें उनको दंड दे करके शुद्ध करेंगे, शुद्ध बनाएंगे, उनका पाप का जो पाप किया पापों से हमें मुक्त कराएंगे। तो आप लोग इतने अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, हाँ ऐसे लग रहे हो, किम अर्थ किस लिए रोक रहे हो, ये पापी को ले जाने के लिए क्यों रोक रहे हो, ये प्रश्न है जमराज का दूतों का प्रश्न है। जमराज के दूत एकदम आश्चर्य हो गए क्योंकि वो पहले ये उनके जीवन में पहला है कि कभी पापियों को जब लेके जाते हैं कोई उनको रोका नहीं, कि जमराज के आइन के ऊपर अभी तक कोई हाथ नहीं उठाया, जमराज के नियम के ऊपर कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जो रोक सके जमराज के आइन को खिलाफ जाए, जमराज के नियम के खिलाफ जाए। लेकिन हमें पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग की में अर्थ किसी लिए रोक रहे हो, जानते हो आप लोग कितने बड़े व्यक्ति का सम्मान का अपमर्यादा कर रहे हो, कितने बड़े धर्म का उल्लंघन कर रहे हो, आप लगते हो इतने सुंदर धर्म का मर्यादा तोड़ रहे हो आप लोग। जमराज के दूत देखो इतने बड़े निष्ठुर स्वभाव के व्यक्ति फिर भी हाँ पाप क्या है धर्म क्या है कम से कम तो ज्ञान है, लेकिन आज के लोगों को पाप क्या है धर्म क्या है कुछ ज्ञान ही नहीं है, नरक जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं। लेकिन देखिए यहां पर जमराज के दूत हमेशा पापियों का संगति करने के बावजूद भी उनको ये ज्ञान था पाप क्या है पुण्य क्या है। तो इसीलिए तो ये विष्णु दूतों को कह रहे हैं हाँ आप लोग भद्र व्यक्ति देखते हो अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये पापी को क्यों बचाने के लिए आ गए, ये पापियों को पापी को बचाने के लिए रक्षा क्यों कर रहे हो, किम अर्थ किसलिए कर रहे हो ये काम, इसलिए ये काम किसलिए कर रहे हो, किम अर्थ धर्मपालस्य किंकर। हम लोग कोई सामान्य नहीं है, हम लोग सब धर्मपालस्य जो धर्म का पालन करता है, जमराज धर्म का पालन करने वाला धर्मपालस्य धर्मपाल का किंकर, हम सब किंकर मतलब किंकर शब्द का अर्थ है मैं क्या करूं, हाँ मतलब किंकर मतलब हमेशा तैयार रहता है, मालिक का जो दास होता है अपने मालिक का आदेश पालन करने के लिए हाँ वो हमेशा रेडी रहता है तैयार रहता है। किंकर मतलब मैं क्या करूं, आप मुझे आदेश दीजिए मैं क्या करूं, इस ये किंकर शब्द का अर्थ है। किम अर्थ किसीलिए धर्मपाल से हमें सब धर्मपाल का किंकर है, हमको रोक रहे हो, निषेध कर रहे हो रोक रहे हो जानते हो। हाँ यहां पर जमराज के दूत ताजुब होकर के बड़े आश्चर्य के साथ साथ एक प्रकार का चेतावनी दे रहे हैं, सावधानी करा रहे हैं, धर्मपाल का आदेश है हमें, आप लोग हमको रोक रहे हो, कि हम लोग को रोक रहे हो मना कर रहे हो। तभी जाकर जमराज के दूतों इस प्रकार का बयान इस प्रकार का विष्णु दूतों का सौंदर्य का बखान करने बाद सुनने के बाद तब जाके विष्णु दूतों लोग कह रहे हैं श्री सुकोवाच इति युक्ते यमदूते इस प्रकार कहे जाने से, इति युक्ते इस प्रकार कहे जाने से किसके द्वारा ना जमराज के दूतों के द्वारा, जमराज के दूतों के द्वारा कहे जाने से इस प्रकार कहने से तो तभी जाके ते मतलब वो लोगों को किस लोगों को ना जमराज के दूतों को कहें, कौन कहें ना विष्णु दूत कहें। हाँ ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जमराज के दूत इस प्रकार विष्णु दूतों को कहने के बाद तो विष्णु दूत क्या कह रहे हैं, ये बात को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ते वासुदेव गुप्त कारिण, वासुदेव मतलब जो भगवान वासुदेव का पुत्र वासुदेव उक्त कारण मतलब वासुदेव का आदेश को पालन करने वाला, वासुदेव का आदेश को पालन करने वाला कौन है, विष्णु दूत है। ये विष्णु दूत तो आए थे क्योंकि उनका भर्ता नाम हाँ म्रियमाण हरिकीर्तनम, मुखस्य हरिकीर्तनम, जो म्रियमाण, म्रियमाण मतलब मरने वाला, म्रियमाण मुखस्य, मरने वाला व्यक्ति का मुखस्य मुंह से हरिकीर्तनम, मरने वाला व्यक्ति का मुंह से हरिकीर्तनम जब सुने, कौन सुने ना, इस संसार में घुमा करते हैं, कौन घुमा करते हैं ना, विष्णु दूत लोग। राजा कौन है? भगवान है। जब एक अच्छे व्यक्ति राजा बनता है तो आप उनके प्रजा उनके विषय में क्या बोलते हैं, क्या चर्चा करते हैं, राजा के विषय में कैसा भाव है प्रजा के विषय, प्रजा के भीतर, ये विषय को जानने के लिए राजा अपने लोगों को भेजता है। उसी प्रकार ये संसार के राजा भगवान है, और ये संसार में लोगों का स्थिति कैसा है भगवान के विषय में, भगवान का भजन ये भौतिक जगत में हो रहा है कि नहीं, यदियों भगवान सब जानते हैं, फिर भी अपने दूतों को ये संसार में रिपोर्ट दूतों के द्वारा वो जानना चाहते हैं। इसलिए भगवान का दूत विष्णु दूत ये सारा संसार में घुमा करते हैं, विशेष करके अपने भक्तों को देखभाल करने के लिए। ये भौतिक संसार में जैसे अजामिल को बचाने के लिए विष्णु दूत पहुंच गए ना, तो ये भौतिक संसार में भगवान विष्णु का दूत घुमा करते हैं, खास करके वो लोगों के लिए जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो लोग भगवान का भक्ति करते हैं वो लोगों को बचाने के लिए भगवान के विष्णु का दूत ये संसार में घुमा करते हैं। तो वासुदेव उक्त कारिण, वासुदेव का आदेश को पालन करने वाला विष्णु दूत वासुदेव उक्त कारिण तान प्रत्युच्य, जब जमराज के दूत ताजुब होकर के भगवान विष्णु का दूतों को इस प्रकार पूछे, तब विष्णु दूत कहने लगे, क्या कहने लगे, तान प्रत्युच्च, जवाब दिए, तान मतलब जमराज के दूतों को, प्रत्युच्च मतलब जवाब दिए, क्या जवाब दिए, कैसे जवाब दिए, प्रहस्य थोड़ा सा हंस करके। भक्तों लोग जब किसी के साथ बात करते हैं ना, बड़े ही प्रसन्नता से, भक्त जो एक बार प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि भक्त बन के यदि दुखी होता है वो भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त कभी दुखी नहीं होता है, भक्त कभी दुखी नहीं होता, यदि दुखी होता है तो दुखी ना भक्त नहीं है। प्रभुपाद जी को एक बार कोई शिष्य पूछा कि प्रभुपाद वो व्यक्ति बड़े दुखी, ये भक्त बड़ा दुखी है, तो प्रभुपाद जी बोले वो भक्त नहीं है, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया फिर दुख क्यों, जिन्होंने भगवान का भक्ति कर रहा है, भले वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति मिला नहीं, उनके हृदय में आया, उत्पन्न नहीं हुआ, यदि वो शुद्ध भक्ति में धारा में चल रहा है, केवल शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं किया लेकिन शुद्ध भक्ति के धारा में चल रहा है, वो कभी दुखी नहीं होगा। दुख कब होता है ना, भौतिक विचार जब मन में आता है तब व्यक्ति दुख होता है, तभी दुखी होता है व्यक्ति। हाँ, तो यहां पर यही बात कहा जाए, भगवान के भक्त पूछे कैसे ना, प्रहस्य, प्रहस्य मतलब थोड़ा थोड़े हंस के, थोड़े थोड़े हंस करके, प्रहस्य इदम इदम इस प्रकार, यह मेघ निर्दय निर्द निहार दिया गिरा। अब भक्त जो बात करता है ना बड़े गंभीर रूप से, बड़े गंभीर होकर के, भक्त लोग गंभीर रहते हैं, भक्त जो होता है इसीलिए अमेरिकन जवान लोग प्रभुपाद जी के, स्वामी जी आपके पहले कई स्वामी जी के साथ हमारा भेंट हुआ है, कई सारे स्वामी जी को हमें मिले हैं, लेकिन आप जैसे स्वामी जी है ना हमें पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा गंभीर रहते हो। अब प्रभुपाद जी हमेशा गंभीर रहते थे, हाँ, ये बात को कहा, ये भी कहा जाता है प्रहस्य मेघ निर्दया गिरा। आप विष्णुदूत जब जमराज दूत को कहें, कैसे कहें, थोड़ा सा हंसे, हंस करके मेघ निर्दया गिरा, गंभीर जो मेघ जिस पर गंभीर रहता है, मेघ निर्दया गिरा, हाँ, गंभीर रूप में वो बोलने लगे, क्या बोलने लगे, क्या बोल रहे हैं, यहां पर कहा जाए विष्णु दूतो उबाच यूं ये धर्मराज से यदि निर्देश कारिण, विष्णु दूत कहे यदि आप लोग भगवान विष्णु के दूतों हो तो धर्म क्या है बताओ, क्या धर्म है बताओ, यदि आप धर्म का पालन से किंग कर, आप लोग कह रहे हो कि आप लोग धर्म पालन करने वाला व्यक्ति का आदमी हो, धर्म पालन करने वाला का व्यक्ति हो, तो धर्म क्या है बताओ। आगे एक पवित्र आत्मा को लेने के लिए छुआ मत, अभी नहीं तो आप लोग को ये तलवार में आप लोग का सर से सिर को अलग कर देंगे। विष्णु लोग डरा दिए, विष्णु दूत डरा दिए, और डर करके जमराज के दूत दूतों लोग जो अजामिल के सूक्ष्म शरीर में चम पास बहुत बड़ा एकदम बहुत भयंकर रस्सी लेके आते हैं पापियों को, जमराज के दूत जो अंतिम समय में आते हैं एक भयंकर बहुत खतरनाक रस्सी लेके आते हैं, उनको गला में बांधते हैं, ये गला में बांधते हैं, बांध करके घुसट घुसट के लेके जाते हैं। तो जैसे विष्णु दूत कह दिए हाँ यदि आप धर्मपाल से का किंकर हो, धर्म क्या है बताओ, छोड़ो छोड़ो, ये पवित्र आत्मा को लेने के लिए तुम लोग आगे हो, और ऊपर से कह रहे हो धर्मपाल से किंकर, छोड़ो छोड़ो, नहीं तो अब भी तुम्हें हमें मार देंगे। इस प्रकार विष्णुदूत भी कह दिए। हाँ तो कह रहे यूयंग ये धर्मराज से यदि निर्देशकार, आप यदि आप लोग यदि जमराज के धर्मपाल का निर्देश का पालन करने वाले, यूंग धर्मराज से यदि निर्देशकार निर्देश को पालन करने वाले ब्रुतो, बताओ बताओ क्या बताओ, न धर्मस्य, धर्म क्या है बताओ। विष्णुदूत पूछ रहे हैं, जमराज के दूतों को पूछ रहे हैं कि ब्रुत धर्मस्य न तत्त्वम्, न तत्त्वम् धर्मस्य न तत्त्वम् सत्य, न तत्व मतलब सत्य क्या है, धर्म क्या है आप हम लोगों को बताओ। न धर्मस्य न तत्त्वम् यत च अधर्मस्य लक्षणम्, धर्म क्या है अधर्म क्या है आप लोग हमें बताओ। विष्णुदूत पूछ रहे हैं जमराज के दूतों को कि धर्म क्या है अधर्म क्या है आप लोग हमको बताओ। कौन व्यक्ति संसार में दंड का भागी है, जो सारे लोग सकाम कर्म में लगे हैं तो सारे क्या दंड का, जमराज के दंड का भागी हैं, जमराज के दंड का भागी हैं, तो बताओ दंड के वास्तविक पात्र कौन है, कौन व्यक्ति दंड भोगने के लिए योग्य है आप लोग बताओ। इस प्रकार विष्णु दूत जमराज के दूतों को पूछे, तो जमराज के दूत विष्णु दूतों को जवाब देते हैं। समय भी हो गया, तो यम दूत ऊंचो, जब विष्णु दूतों का इस प्रकार का सवाल हुआ तो जमराज के दूत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यम दूता ऊंचो, यम दूतों ने कहे क्या कहे, धर्म क्या है अधर्म क्या है पूछ दिए ना, तो कह रहे हैं वेद प्रणहित धर्म, वेद में जो बताया गया है वही धर्म है। यज्ञ वै विष्णु वेदस्य सर्व अहमेव्य वेद्य, वेद पाठ करने का मतलब क्या है भगवान विष्णु को जानना, वेदस्य सर्व अहमेव वेद्य, वेदस्य सारे वेदों का पाठ करने का मतलब क्या है भगवान विष्णु को जानना। हाँ तो भगवान यहां पर यमदूतों को कह रहे हैं ना, यमदूता उचु जमराज के दूत कह रहे हैं कि वेदो प्रणय ही तो धर्म, वेदों में जो बताया गया यही ही धर्म है, और ही अधर्म से तत् विपर्जय, और जो वेदों का विपरीत है वो अधर्म है, सीधी बात, बड़े सीधे जवाब दिए, बड़ी सीधा बात बताए जमराज के दूतों ने कि वेदों में जो बताया गया वो धर्म है, और जो वेदों का विरोध है हाँ तो वो अधर्म है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू, ये वेदो कहां से निकली है, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू, स्वयंभू मतलब अपने से, नारायण से जमराज के दूत कह रहे हैं। देखिए जमराज के दूत होने के बाद भी भगवान के विषय में कितने बड़े भारी ज्ञान है, भले हमेशा पाप कार्य में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी धर्म के विषय में कितना बड़ा ज्ञान है, और जमराज धर्म के विषय में उपदेश कर रहे किसको, विष्णु दूतों को, धर्म क्या है अधर्म क्या है वो उपदेश कर रहे, खाली विष्णु दूतों को नहीं सारा संसार को, हम लोगों को, आजकल के पापी लोग धर्म क्या है अधर्म क्या है बताओगे ना, हाँ मछली खाना धर्म है, दारू पीना धर्म है, जो भी करो धर्म है, आत्मा को दुखी मत करो, आत्मा को कष्ट मत पहुंचाओ, आत्मा यदि कहता है मछली खाने के लिए खा लो, कुछ लोग ऐसे कहते हैं प्रभु जी आत्मा को, आत्मा जब चाहता है ना तो आत्मा यदि चाहता है कि दारू खाओ बीड़ी खाओ तो आत्मा चाहता है तो बीड़ी खाओ मरो नरक में जाओ, कहां पे लिखा है आत्मा का धर्म है बीड़ी खाना, आत्मा का धर्म है भगवान का प्रसाद खाना, बीड़ी खाना खाने के लिए नहीं, शास्त्रों में नहीं कहा गया, हाँ, तो यहां पर ये कहा जाता, देखिए जमराज के दूतों में कितना बड़ा भगवान के विषय में ज्ञान है, आज के लोगों में इतना बड़ा ज्ञान नहीं है। वेदो प्रणहित धर्म न ही एतत् विपर्जय, वेदो नारायण साक्षात स्वयं। अरे वेद कहां से निकली है? भगवान के श्वास से। भगवान जो श्वास छोड़े रूख सा, पहले एक ही वेद था, लेकिन कलिजुग लोगों के लिए, क्योंकि कलिजुग के लोगों का बुद्धि बड़े कमजोर है, तो कर्म ज्ञान भक्ति को सब मिला करके खराब कर देंगे करके, इसलिए भगवान ने उनका बंट डिवाइड कर दिया। भगवान एक वेद था, लेकिन उनको रूख साम जजु अथर्व चार भाग कर दिया। हाँ, तो यही कह रहा है जमराज के दूत, कह रहे हैं वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू, ये जो वेद है ना भगवान से निकली है। और वेदों में जो बताया गया वो धर्म है, और वेदों में जो बताया नहीं गया वो अधर्म है। इति सुश्रमु, इस प्रकार का सुना। कौन सुने? ना जमराज के दूतों से विष्णु दूत इस प्रकार का सुने। हाँ, फिर आगे जाकर के किस प्रकार जमराज के दूत धर्म के विषय में बड़ा विस्तार से कहेंगे हमें, फिर नेक्स्ट क्लास से सुने। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। एनी क्वेश्चन? किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो, 5 मिनट है तो कुछ प्रश्न है तो। हाँ हाँ, अच्छी प्रश्न है कि मैंने बताया कि दीक्षित ना गुरु के द्वारा जब दीक्षित नाम होता है, वो नाम लेने से क्या हमारा उद्धार होगा? और हाँ, यदि ऐसे हमें हमारा बच्चा का नाम कृष्ण रख दिया, हमारे द्वारा हम रख दिए कृष्ण, हम शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन हमारा बच्चा का नाम कृष्ण रख दिया, और कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण आओ ऐसे बोलेंगे, तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? नहीं हो, ऐसा नाम तो कल्याण करेगा, लेकिन ये जो ये बात भी कहा गया है, अजामिल ने नामाभास तक पहुंचा था। आप जब इस प्रकार का नाम लोगे, ये नाम आपको नामाभास तक पहुंचाएगा। फिर नाम अजामिल ने नामाभास स्थिति तक पहुंचा था, ये नामाभास के बाद उनको नामाभास तक स्थिति के बाद उनको विष्णु दूतों का संगति किया, विष्णु दूत उनको मिले। कैसे मिले? ना उन्होंने अपने पुत्र को जो बुला रहा था, वो नाम वो अजामिल का पुत्रों का बुला रहा, वो नामाभास स्थिति तक पहुंचा दिया था। तो ये नामाभास स्थिति तक पहुंचा दिया था, उसके बाद उनको साधुओं का संगति हुआ। विष्णु दूत कौन है? साधु है, भगवान के भक्त मतलब साधु है। तो अजामिल ने जो नाम लिया, वो नाम उनको नामाभास स्थिति तक पहुंचाया, उसके बाद ये नामाभास स्थिति फिर उनको शुद्ध भक्तों के साथ भेंट हुआ, भेंट कराया। तो ऐसे ऑर्डिनरी लेंगे तो आपको नामाभास तक पहुंचाएगा, भगवान का नाम ऐसे लोगे नामाभास तक पहुंचाएगा। उसके बाद यदि आप एक शुद्ध भक्त के संरक्षण में रहोगे, मतलब शुद्ध भक्त के निर्देश से फिर नाम लेना शुरू करोगे, फिर भगवत धाम जाओगे। ओके, थैंक यू। और एनी क्वेश्चन? धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके लिए महाप्रसाद है, तो आप लोग प्रसाद हॉल में जाइए भगवान का प्रसाद लेकर के। हरे कृष्ण। भक्तों की जय।
कृपया सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएं। प्रसाद सभी के लिए प्रसाद है। प्रसाद मंत्र हम चाहे तो थोड़ा यहाँ उच्चार कर सकते हैं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतन राजन विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्याजाल जड़ेन्द्रिय ताहिकाल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्ये जीवाती लोभ माया सुदूरमती ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय कुरी बारे जीवा जाए स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्न अमृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाकोर श्री चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवाशादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गिरधारी जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी गौर निताय महाप्रसादम की, शील प्रभुपाद की।